प्रणाम देवी, मैं रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ।
प्रणाम देव, आपका स्वागत है। कहिए, कैसे आना हुआ?
देवी, यहाँ तक तो न जाने किस अनजानी शक्ति से बंधा चला आया। अब आपका परिचय प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा हो रही है।
मैं महाराज रत्नाकर की पुत्री वैष्णवी हूँ।
एक राजपुत्री का इस वेश में, इस निर्जन प्रदेश में रहने का अभिप्राय?
तपस्या।
आश्चर्य। राजवंश, यौवनावस्था, अनुपम सुंदरता, इन सबका तपस्या से क्या संबंध?
आज तक तो मैं भी अनजान ही थी,
और अब
न जाने क्यों मन ने निर्णय दिया है कि मेरा अभीष्ट आपको। आप
रुक क्यों गई? देवी वैष्णवी, कहिए ना।
अब कैसे कहूं कि मुझे आज ही विदित हुआ है कि मेरी तपस्या का मुख्य कारण आपको सदा सर्वदा के लिए प्राप्त करना है।
आप मौन क्यों हो गई देवी?
कैसे कहूं अपने मन की बात?
बोलिए ना देवी।
हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, स्वयं ही क्यों नहीं जान लेते मेरे हृदय की बात?
मुझसे कोई रिश्तेदार हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ।
नहीं नहीं, ऐसा कहकर मुझे लज्जित मत कीजिए।
तो कहिए ना अपने घोर तपस्या का कारण।
मैं आपको।
हाँ हाँ,
आपको।
हाँ कहिए।
मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ।
ओह, ये क्या कह दिया आपने देवी?
क्यों, क्या अनुचित है मेरी अभिलाषा?
संभवतः इस जीवन में तो अनुचित ही है
प्रभु।
हाँ देवी, मैं विवाहित हूँ और इस जीवन में मैंने एक पत्नी का व्रत लिया है। मेरी भार्या जनक दुलारी सीता को लंकेश छल पूर्वक हर कर ले गया है। मैं तो अपनी प्रिय पत्नी की पुनः प्राप्ति के लिए लंका पर चढ़ाई करने जा रहा हूँ।
तो क्या मेरी तपस्या अकारत गई?
कर्म कभी अकारत नहीं जाता देवी, नियति के खेल बड़े निराले होते हैं। न जाने सर्वेश्वर की क्या इच्छा है, अतः शोक मत करो।
शोक के अतिरिक्त अब जीवन में रखा ही क्या है?
फिर तो मुझे निराश ही लौटना पड़ेगा।
क्यों प्रभु?
सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए मैं लंका पर चढ़ाई करना चाहता हूँ, किंतु सामने विशाल सागर मुंह पाए खड़ा है। कैसे पार करूंगा इसे, कैसे प्राप्त कर पाऊंगा विजय?
हे दीन बंधु, आप सागर पर सेतु अवश्य ही बना पाएंगे।
वो कैसे?
आपके सेना नायक नल व नील को एक ऋषि का श्राप है कि उनके द्वारा सागर में फेंका हुआ कोई भी पदार्थ डूबेगा नहीं।
ओह, ऋषि का श्राप तो मेरे लिए वरदान बन गया।
किंतु रावण पर विजय।
किंतु क्या देवी?
लंकेश रावण भगवान भोलेनाथ का कृपा पात्र है, और जिस पर देवाधिदेव प्रसन्न हो उसका कोई अहित नहीं कर सकता।
तो क्या सदैव मैं विरह की अग्नि में ही चलता रहूंगा?
नहीं देव, इसका एक ही उपाय है।
शीघ्र कही देवी।
प्रभु, आप सागर तट पर विधि अनुसार बालू से शिवलिंग का निर्माण कीजिए और स्थापना यज्ञ की पुरोहिताई के लिए रावण को बुलवाइए।
मेरा परम शत्रु और मेरा पुरोहित?
यही तो युक्ति है देव। यदि रावण नहीं आता है तो कैलाशपति के कोप का भागी बनेगा, और यदि आता है तो आपको इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद भी देगा।
अति उत्तम, आपकी यह कृपा मैं कभी नहीं भूलूंगा।
लज्जित मत कीजिए। हाँ, आक्रमण से पूर्व देवी दुर्गा का पूजन करना न भूलिएगा।
मैं ऐसा ही करने का निश्चय कर चुका हूँ। आप भी हमारी विजय के लिए भवानी से प्रार्थना कीजिएगा। अच्छा तो अब आज्ञा दीजिए।
क्या क्या सचमुच ही चले जाइएगा?
प्राणी कर्म बंधन से बंधा हुआ है देवी।
तो क्या मेरी आंखें केवल नीर ही बहाती रहेंगी, इनके दर्शन प्यास कभी ना मिटेगी?
देवी वैष्णवी, रावण पर विजय प्राप्त करके सीता को कुशलता पूर्वक प्राप्त करने के पश्चात मैं एक बार तुम्हारे पास किसी ना किसी रूप में अवश्य आऊंगा। और ये मेरा प्रण है कि यदि तुमने मुझे पहचान लिया तो अपना व्रत तोड़कर भी तुम्हारा पत्नी रूप में वरण कर लूंगा।
प्रभु आप धन्य हैं आप, आपकी कृपा अपरंपार है। मैं पल पल उस स्वर्णिम घड़ी की प्रतीक्षा करूंगी प्रभु।
तो तब तक के लिए प्रणाम देवी।
प्रणाम देवेश्वर, प्रणाम। भवानी पग पग पर आपकी सहाय हो।
जय भवानी।
चैत्र नवरात्र का भली भांति पूजन करके श्री राम ने सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। दल बल सहित भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की। असूज के नवरात्र प्रारंभ होने तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम विजय श्री की ओर बढ़ने लगे। इधर भगवती देवी वैष्णवी निराहार रहकर श्री राम की विजय की इच्छा लिए नवरात्रि पूजन में व्यस्त हो गई। जैसे जैसे उनके पूजन की गहनता बढ़ती गई, भगवान राम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते गए। दशमी को जैसे ही यज्ञ की पूर्णाहुति डाली, रावण हतप्राण हो धराशायी हो गया। यज्ञ के पश्चात भवानी वैष्णवी ने भंडारे का आयोजन किया। दूर दूर से याचक व साधक आते, अन्न वस्त्र आशीर्वाद तथा अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करते। उस दिन सायंकाल के समय
जय 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 हो देवी वैष्णवी की जय हो, ऐसे ही अपने भक्तों को सुख आनंद बांटती रहो देवी।
ये लीजिए ब्राह्मण देवता, कुछ वस्त्र स्वीकार कीजिए।
जय हो जय हो जय हो देवी।
रुकिए ब्राह्मण देवता, मेरी इच्छा है कि आप कुछ और मांगें।
जो चाहिए था वह आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो गया। रावण पर मेरी विजय हुई, मुझे मेरी सीता मिल गई।
प्रभु राम, आप इस वेश में, ये क्या हो गया? मैं हतभागी आपको पहचान न सकी, मैं हार गई, मेरी तपस्या अकारत गई, इस जीवन से अब क्या लाभ?
नहीं वैष्णवी नहीं, अकारण दुख मत करो, विधि का विधान अटल है, तुम्हारा और मेरा मिलन अवश्य ही होगा।
सत्य प्रभु, कब?
कलयुग के अंत में, तब मैं दक्षिण में कल्कि अवतार लूंगा। अधर्म का नाश करता हुआ मैं बढ़ूंगा, उत्तर से यही कार्य करती हुई तुम आओगी। मध्य भारत में हमारा मिलन होगा, चिरस्थाई मिलन।
किंतु प्रभु इतनी लंबी प्रतीक्षा।
तुम शीघ्र ही ये स्थान त्याग कर हिमालय के निकट उत्तरी भारत में त्रिकूट पर्वत पर एक गुफा में अखंड तपस्या में लीन हो जाओगी। कलयुग में उचित समय आने पर तुम्हारी समाधि स्वमेव भंग हो जाएगी। तब धर्म की स्थापना तथा दुखी मानव मात्र का कल्याण तुम ही कर पाओगी। कलयुग में तुम्हारे असंख्य भक्त होंगे, उन्हें बुद्धि शक्ति भक्ति एवं मुक्ति तुम्ही मुक्त हस्त से बांटोगी।
जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तब तक के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।
प्रणाम देवी वैष्णवी, प्रणाम।
त्रेता युग समाप्त हो गया, कलियुग आ गया, धर्म क्षीण होता गया, प्रपंच बढ़ते चले गए, सहज स्नेह परोपकार दया ममता लोप होते गए, ईर्ष्या द्वेष अहिंसा अशांति का बोलबाला होने लगा। उन्हीं दिनों नाथ संप्रदाय में एक सिद्ध हुए बाबा भैरवनाथ। उन्होंने हठ योग एवं तांत्रिक पद्धति से अनेक शक्तियां प्राप्त करी, मारण मोहन वशीकरण देह परिवर्तन और न जाने क्या क्या, इन सब का आश्रय लेकर उसने तपस्या द्वारा ये वरदान भी प्राप्त कर लिया कि उसकी मृत्यु त्रिशक्ति अवतार के हाथों होगी। अपनी सिद्धियों के गर्व की ज्वाला में धधकता भैरवनाथ अपने जीवन से ऊब गया। वह जहां तहां त्रिशक्ति अवतार को खोजने लगा ताकि इस जीवन से मुक्ति प्राप्त कर सके। उधर वर्तमान कटरा वैष्णो देवी के निकट ही हंसाली ग्राम में एक देवी भक्त रहता था जिसका नाम था पंडित श्रीधर। बचपन से ही उसका ध्यान आद्याशक्ति भवानी दुर्गा के श्री चरणों में लगा हुआ था और तभी से उनका नियम था कि प्रातः पूजन के पश्चात वह पहले कन्या पूजन करता, उन्हें भोजन कराता, तब स्वयं अन्न ग्रहण करता। धीरे धीरे उसके मन में भवानी के साक्षात दर्शनों की इच्छा बलवती होती गई। विवाह हुआ और निःसंतान श्रीधर अधेड़ हो गया, किंतु उसकी मातेश्वरी दर्शन की आशा पूर्ण ना हुई। जैसे भगवान की गति न्यारी होती है, उसी प्रकार भक्तों की गति भी न्यारी होती है। एक दिन श्रीधर ने निश्चय कर लिया कि जब तक भवानी स्वयं आकर उसे भोजन नहीं कराएंगी, वह भोजन नहीं करेगा। श्रीधर प्रातः उठता, नित्य क्रिया करता, पूजन के पश्चात कन्याओं को भोजन कराता, किंतु स्वयं निराहार रहता। इस प्रकार कई दिन व्यतीत हो गए। अंततः एक दिन श्रीधर ने कन्याओं को भोजन कराकर विदा किया और सर्वेश्वरी के ध्यान में लीन हो गया।
प्यारी मेरी माँ, भक्तों की प्यारी मेरी माँ, जग रचने वाली मेरी माँ, जग रचने वाली मेरी माँ। प्यारी मेरी माँ, जग रचने वाली मेरी माँ, मा। दर से खाली ना जाए सवाली, फिर मेरी है उम्दे क्यों झोली है खाली, दुख टारे सभी के जग की रखवाली, दया करो अम्बे मेरी भगवती माँ। भक्तों की प्यारी मेरी माँ, जग रचने वाली मेरी माँ, प्यारी मेरी माँ, जग रचने वाली मेरी माँ, भक्तों की प्यारी मेरी माँ।
वाह, तुम गाते बहुत सुंदर हो।
तुम गई नहीं, तुमने भोजन भी नहीं किया।
भूखे का भोजन कैसे खाए कोई?
क्या मतलब?
बहुत चतुर बनते हो, हमें तो खिलाते हो, स्वयं क्यों नहीं खाते?
वो तुम भोजन करो ना।
तुम्हें तुम्हारी माता की सौगंध, लो मेरे हाथ से भोजन करो।
हे भगवती, ये किस दुविधा में डाल दिया है तुमने।
लो खाओ। हाँ हाँ, खाओ पुत्र, थोड़ा सा और खाओ। हाँ
आप, जय भवानी, जय कल्याणी, मेरा जीवन सफल हो गया। बस देवेश्वरी, अब तो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दो।
श्रीधर, मानव योनि सर्वोत्तम है और जन कल्याण के लिए किया गया पुरुषार्थ अलौकिक फलदायक है। अब तुम स्वयं निर्णय करो कि मेरे धाम में आनंद मंगल चाहते हो अथवा मानव कल्याण हेतु सेवा।
हे कल्याणी, मैं तो आपके श्री चरणों का दास हूँ और सदैव उन्हीं की सेवा में रहना चाहता हूँ।
तुम्हारी सेवा भावना ही तुम्हें अमर करेगी। जब तक तुम्हारे वंशजों में भक्ति के साथ साथ परोपकार की भावना रहेगी, वे मेरे मुख्य पुजारी रहेंगे।
मेरे वंशज?
हाँ श्रीधर, एक के बाद एक तुम्हें चार पुत्र प्राप्त होंगे।
आप धन्य हैं महामाया।
और अब ध्यान पूर्वक मेरा आदेश सुनो।
आज्ञा अखिलेश्वरी।
चहुं ओर अनाचार फैल रहा है, घृणा द्वेष व हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। वैष्णव धर्म की पुनर्स्थापना के लिए तुम्हें बहुत कार्य करना है।
मैं तत्पर हूँ मातेश्वरी।
तो सर्वप्रथम तुम्हें एक विशाल भंडारे का आयोजन करना होगा।
जो आज्ञा अखिलेश्वरी, किंतु मेरे पास।
तुम्हें केवल निमंत्रण देना है, शेष मुझ पर छोड़ दो।
आपकी आज्ञा सिर माथे पर।
भवानी वैष्णवी का आशीष प्राप्त करके श्रीधर वैष्णवी भंडारे हेतु जनता जनार्दन को निमंत्रित करने के लिए निकल पड़ा। निकटवर्ती सभी ग्रामों में माता वैष्णवी देवी के नाम पर अपने घर में वैष्णवी भोजन के लिए आमंत्रित करके जब अपने गांव की ओर लौट रहा था तो बलि भैरवनाथ अपने 360 शिष्यों सहित आता हुआ दृष्टिगोचर हुआ।
अलख निरंजन, अलख निरंजन।
प्रणाम योगीराज।
आयुष्मान भव।
योगीराज, आपकी अति कृपा होगी यदि कल प्रातः अपनी शिष्य मंडली सहित अपने इस दास श्रीधर की कुटिया ग्राम हंसाली में भंडारा ग्रहण करें।
अरे मूर्ख, भला तू क्या भैरवनाथ को तृप्त कर पाएगा?
उन्हें तो देवराज इंद्र भी तृप्त नहीं कर पाए, तेरी तो बिसात ही क्या है।
आपने सत्य कहा, भला मेरी क्या बिसात है कि विशाल भंडारे का आयोजन कर सकूं? ये तो भगवती वैष्णवी का आदेश है जिसकी मैं पूर्ति कर रहा हूँ।
अलोक निरंजन, कौन सी देवी?
जी, भवानी वैष्णवी देवी।
अरे क्या वही वैष्णवी देवी जिसने एक कोल से कभी ना समाप्त होने वाला तालाब बना दिया, जिसे कोल कंधोली कहते हैं?
वही वैष्णवी देवी जिसने माई देवा को जन्म मुक्त कर दिया और आज उसकी याद में माई देवा के ढक में सुंदर मंदिर बना हुआ है।
महामाया वैष्णवी देवी तो कृपा की सागर है।
अलख निरंजन, सुनो श्रीधर, हम तुम्हारे भंडारे में अवश्य आएंगे
और वहीं देखेंगे तुम्हारी माता और उसकी कृपा को।
अलख निरंजन।
नियत दिवस भोर बेला से ही हंसाली ग्राम में जयकारे गूंजने लगे। श्रद्धालुओं की एक बहुत बड़ी संख्या एकत्रित हो गई। श्रीधर चिंतित हो उठा।